और फिर एक और दूसरी निशानी, सुब्हान अल्लज़ी खलक अलज़वाज कुल्लहा, पाक है वो जात जिसने जुमला इकसाम के जोड़े पैदा किए। कौन से जोड़े पैदा किए, किसको जोड़ा कहा गया, पेयर्स की बात है यहाँ, आप देखिएगा। मिम्मा तुम्बितुल अर्दु व मिन अन्फुसिहिम व मिम्मा ला यालमून, खा वो जमीन की नबातात में से हों या खुद इनकी अपनी जिन्स यानी नौ इंसानी में से हों या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं है। इस आयत ने भी इंसानों को मजबूर कर दिया कि गौर व फिक्र करो। आज से कुछ अरसा पहले इंसानियत क्या सोचती थी कि जोड़े सिर्फ इंसानों के होते हैं, यानी औरत और मर्द। थोड़ा सा आगे इंसानियत गई तो उसने कहा नहीं, मेल एंड फीमेल एनिमल्स में भी है, यानी अगर भैंसा है तो भैंस भी है, समझिए कि बकरा है तो बकरी भी है, ये भी बात डिस्कवर हो गई। और थोड़ा सा जब आगे इंसानियत गई तरक्की की तो पता चला कि पौधों के भी जोड़े होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा था, खजूर नर भी होती है मादा भी होती है। चंद अहादीस हैं जिससे पता चलता है कि नर और मादा खजूर की पेवनकारी से क्या कुछ हुआ। लेकिन आज टूडे आप देखिए कि 12 जुलाई 2017 12:36 पर यह बात आपसे कर रही हूँ, आज साइंस ने यह साबित कर दिया हर चीज जो कायनात में ये जोड़े में, उसकी सबसे छोटी इकाई को एटम कहते हैं। एटम के अंदर अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक बीच में जो न्यूक्लियस में छुपी हुई चीज है वो न्यूट्रॉन है। हर चीज जोड़े के साथ है, पौधे मेल फीमेल। बस जब आप फसल नहीं आती तो वो कहते हैं कि इसका अंतर कि आपके कुछ पौधे मेल होने चाहिए कुछ फीमेल होने चाहिए। साइंस ने तो ये बताया कि सब कुछ जोड़ों में है। इस किताब ने बता दिया सब जोड़ों में सिर्फ कायनात की एक चीज ऐसी है जो वाहिद है, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये है तौहीद की निशानी। उसका कोई जोड़ा नहीं, लम यलिद वलम यूलद वलम यत्तखिज साहिबा। सुबह शाम कितनी बार कुल हो अल्लाह पढ़ते हैं, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्ला कुफुवन अहद। आप इस आयत की रोशनी में देखें वो एक है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। इवन आज ये भी प्रूव हो गया, और आप गौर करें तो आप खुद हैरान होंगे, बेजान चीजें भी जोड़ों में, रात का जोड़ा दिन, सुबह शाम, गर्मी सर्दी, बहार खिजां, मशरिक मगरिब, शमाल जुनूब, और ले आइए जो लाते हैं आसमान जमीन सूरज चांद, हर चीज जोड़ों में। इसलिए बेजोड़ रहना भी नहीं चाहिए। इसीलिए सूरत नूर में कहा कि अब वन के हो लिया ममिन को, तुम में से जो बगैर जोड़े के उनकी शादियां कर दो, कंवारे हैं बालिग होते हैं तो कर दो, और अगर बेवा हो गई औरत तो इद्दत के बाद कर दो, मुतल्लिका है तो कर दो, मर्द है उसकी बीवी मर गई कुछ भी हुआ और 3 दिन के बाद शादियां कर दो। इस कायनात में अकेले रहना मुजर्रद रहना ये इंतहाई गैर फितरी है। और जब से वेस्ट ने इस हद को तोड़ा, आज देखिए सेम सेक्स मैरिज पे तो आ गए, कल तो पता नहीं जानवरों से शादी भी अलाउ हो गई, लीगल होगी, लिख ले मेरी बात, डेट तो अभी बता दी है। जिस तरतीब से लोग इन जोड़ों का मकसद खत्म करते जा रहे हैं, पहले वेडलॉक तोड़ा, बगैर शादी के साथ रहे कुछ अरसा, उसमें दिल खिलाते रहे, लिविंग टुगेदर और बॉय और गर्ल फ्रेंडशिप, चलते चलते आज देखिए लड़की का लड़के और लड़की का लड़की से दिल भरा तो आज सेम सेक्स है, आप सब जानते हैं। और जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे लगता है इंसान का सबसे बड़ा हक ही है। लिख लीजिए ये बात, आज से 10, 20, 25, 50 कब होगी मुझे नहीं पता, जानवरों के साथ शादी लीगल होगी, कुत्ते के साथ एक लड़की की शादी 100% लीगल होगी, और बकरी के साथ आदमी की शादी होगी, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ये बता दिया, लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम सुम रदतना हु असफल साफिलीन असफल। मैं इसको पढ़ती हूँ, ऐसा लगता है कि जब अल्लाह ने पैदा किया तौहीद पे बंदा रहता है तो वो अहसन तकवीम है। दुनिया में सबसे अहसन तकवीम मोमिन है, मुत्तकी है, मवाहिद है, रब से प्यार करने वाला बंदा दुनिया का सबसे ज्यादा अहसन है। लेकिन असफल 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 साफिलीन नीचों से नीचा कब होता है, जब रब से ताल्लुक टूटता है, कुफर फजूर, और होते होते फिर आप देखिए कि इंसान बेदीन हो जाता है, लादीनियत आ जाती है, और खुदा को तो मानना भी नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कभी इस पे गौर तो करो। फिर आप देखिए कि ये जो बात की ना कि वमिम्मा ला यालमून, और उनके भी जोड़े हैं जिनको वो जानते नहीं, ये सारी बात उस पे हो रही है। जब ये कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त एहसास भी नहीं था कि एटम कोई चीज़ होती है, न्यूट्रॉन भी कोई लफ्ज़ है, कोई प्रोटॉन भी लफ्ज़ है, कोई क्रोमोसोम्स भी होते हैं, कोई जेनेटिक कोड्स भी होते हैं। उस दौर के तो लोगों को ये पता ही नहीं था। और याद रखिए, लिख लें, जूं जूं साइंटिफिक रिसर्चेस आम हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आम हो रही है, पहले आप कहते हैं सुई गैस, फिर आप कहते हैं न्यूक्लियर गैस, फिर आप कहते हैं फलां गैस, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कायनात में, अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक शुरू हो गई है ना चीज़ें, इस नए आने वाले दौर में न जाने क्या क्या एनर्जी की बातें करनी है। लोग कहेंगे बैकवर्ड, हाँ वो हमारे माँ बाप थे, वो बिजली का मीटर लगवाते थे, फिर वायरें लगती थी, फिर बिजली आती थी। क़यामत से पहले आप देखिएगा हालात ऐसे होने, आप खुद बिजली स्टेशन होंगे, आपके अपने वजूद के अंदर बिजली लगी होगी। लोग हंसेंगे कि वो पहले दौर में मशीनों से ही काम करते थे, आपको क्या पता कि इस दौर से आगे वाले दौर में क्या कुछ आ रहा है। अल्लाह ने यहाँ बताया, और बताया जिनको उन्होंने गौर नहीं किया। अगर मुसलमान इन आयतों को पढ़ के रिसर्च में काम कर रहे होते तो आज एप्पल और फलां और बड़े और जो कुछ दुनिया के बड़े काम है इनके पीछे मुस्लिम जहन होते। लेकिन हमें खाने की फुर्सत नहीं, हम तो खाने के बिजी हैं, हमें तो खाने से फुर्सत नहीं, पहनने से फुर्सत नहीं, शादियों से फुर्सत नहीं। हम अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल कर लेते हैं कि हमारी एक खुशी हमारे एक कई गमों का ज़रिया बन जाती है। खिला नहीं सकते खिलाना, निभा नहीं सकते निभाना, घर में पैसे नहीं उधार लेके शादियां करनी है चाहे हजारों यूरोस लग जाए। क्या ये इंसानियत है? अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम रब का कुर्ब पा सकें। अब एक तीसरा एंगल देखिएगा, वायतुल्लहुमुल्लैल, इनके लिए एक और निशानी है रात की, नस्लखु मिन्हुन नहारा, हम इसके ऊपर से दिन हटा देते हैं, फैज़ा हुम मुस्लिमून, तो फिर इन पर अंधेरा छा जाता है, वश्शम्सु तजरी लि मुस्तकर्रिल्लहा, और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है, ज़ालिक तकदीरुल अज़ीज़ अल अलीम, ये जबरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। ये क्या निशानी है? बात तो कर चुके, लेकिन आप देखिए कि रात और दिन का आना और जाना कैसे गुजरता है, कैसे ये महसूस होता है। ना तो एकदम रात से दिन आ जाता है और ना दिन से रात, वाइट को ब्लैक में करें तो बीच में ग्रे तो आएगा, तो सुबह को रात में बदलेंगे तो मलगजा तो आएगा, और अंधेरी रात जब सुबह में आती है तो एकदम सहर नहीं होती, सब्र तो करना पड़ता है। इसमें ये निशानी है, मुनासिब वक्त का इंतजार करो। आज दुखी हो, दुखों की रात है, सुख की सुबह आएगी, लेकिन जरा सा सब्र करके अल्लाह को दिखाओ तो सही कि मैं साबिरात में से हूँ। और इसी तरह से आज खुशियों की सुबह है, बहुत दौलत है, हर चीज़ घर की बांधी है, तो ज़्यादा मान ना करो, हर सुबह के बाद रात आती है। क्या पता चला रात और दिन में निशानी में कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी की रातें लंबी, कभी के दिन लंबे। जिस तरह कायनात में हमेशा रात नहीं होती, इसी तरह किसी इंसान की ज़िंदगी हमेशा दुखों से नहीं गुजरेगी, खुशियाँ आएंगी, और इसका ऑपोजिट भी होगा। अगर आज खुशियों में और अकड़े और तुम्हें रब के वजूद का एहसास ही ख़त्म हो गया, तो गौर व फिक्र करो कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ क्यों रखा हुआ है। ये तुम पे भी आएगा, और इसमें आप देखिए कि सूरज और चांद की बात के अंदर अब चांद की बात की जा रही है, वल कमर कद्दर ना हु मनाजिला हत्ता दा कल अर्जुन अल कदीम, चांद उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि इनसे गुजरता हुआ वो फिर खजूर की सूखी शाख के मानिंद रह जाता है। चांद की 27 मंजिलें होती हैं, शुरू और आखिर कमर, पहले 2-3 दिन का चांद हिलाल, और जो 12, 13, 14 के इर्द गिर्द 1, 2, 4 दिन है इसमें बदर, बदरे मुनीर, पूरा चांद, अधूरा चांद और बिल्कुल ना चांद। यहाँ जो कल उर्जून अल कदीम है ना, तो कभी आप खजूर का कोई दरख्त दूर से देखें, कभी अरब मुल्कों में मौका हो, तो जो उसके झुंड होते हैं ना वो यूं कर्व्ड होते हैं, हवा के साथ यूं झुके होते हैं। चांद का भी एक ऐसा वक्त आ जाता है जो बिल्कुल पतली सी शाख में होता है, और ये कौन सा चांद होता है, जो बिल्कुल आखिरी रातों का या बिल्कुल शुरू की रातों का। और आपको पता है कि चंद दिन फिर चांद गायब रहता है, आधी रात के वक्त कहीं नजर आता है, आम वक्त में मगरिब के बाद नजर नहीं आता। कौन कर रहा है ये सब? उस दौर में तो लोगों को ये नहीं पता था, उस दौर में तो नील आर्मस्ट्रांग और कोई और चांद पे जाके नहीं देख के आए थे ये क्या कुछ है। अल्लाह ताला कहते हैं जरा बताओ इसको किसने किया। अब आप बताइए कि इस एक आयत पे गौर करने वाले अगर चांद पे कदम रखते तो लोगों को अल्लाह का वजूद ना मिलता। और आप पता है कि नबी सल्लम का वाक़िया है शक़े कमर, सही हदीस से साबित, आपके मौजजात में से एक मौजजा था, लोगों ने कहा अगर आप नबी हैं तो इस चांद को दो टुकड़े करके दिखाएं। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था, अल्लाह के हुक्म से नबी ने ऐसे हाथ किया तो चांद आधा सफा की तरफ और आधा मरवा की तरफ, चंद मिनट तक ये मंजर हो रहा, उसके बाद चांद दोबारा मिल गया। अब जो लोग चांद पे गए हैं, हमारी वेबसाइट पे वो तस्वीर भी डली हुई है, अगर आप जाके नूरुल कुरान में प्रेजेंटेशन में देखिएगा तो वेन द मून सप्लिट है शायद कुछ इस तरह का नाम होगा, तो आप देखिए कि चांद पे जाने वालों ने बताया कि चांद के बिल्कुल बीचों बीच एक कट है, और ऐसे लगता है जैसे वो प्लेट को टूटने के बाद एल्फी से जोड़े तो कट रहता है, आज भी मौजूद है। कहाँ लोग इंसानियत को रब से काटेंगे, ये हम सुस्त हुए हैं इसलिए लोग कुफर पे हैं, ये हम आजकल अपना काम छोड़े हुए इसलिए कायनात अल्लाह से दूर है। फितरत पुकारती है रब से प्यार करो, फितरत पुकारती है वो है तुम्हारे साथ, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, लेकिन हमारे पास अभी वक्त नहीं है, हम अल्लाह के लिए अपनी जिंदगियां नहीं लगा सकते। मैं सोचती हूँ कि हम जन्नत के लिए तो शायद कोई नेकी करते हैं लालच में, लेकिन दुनिया में इंसानियत को रब से जोड़ने के लिए शायद कम ही कम करते हैं। फिर आप देखिए इन आयतों में सूरज के अपने टिकाने पर जाने की बात है, ये कौन सी बात है? सही रिवायत में आता है बुखारी की है कि सूरज रात को जब यहां से ढलता है तो अल्लाह के अर्श के आगे जाके सजदे में चला जाता है, वो सजदे में ही रहता है, फिर अगले दिन अल्लाह से इजाजत मांगता है तो अल्लाह कहते हैं जाओ चले जाओ। और इसी तरह एक रात ऐसी आएगी कि सूरज जाके डूबेगा, सजदे में जाएगा, वो इजाजत मांगेगा, इजाजत ही नहीं मिलेगी। एक रात, दो रात, तीसरी रात पे इजाजत क्या मिलेगी? इजाजत है, लेकिन जिधर से अभी डूबा है वहां से निकल आज। और फरमाया ये है जब सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा, और इतनी बड़ी निशानी को देख कर लोग तौबा करेंगे, अल्लाह की तरफ आएंगे, लेकिन अल्लाह ने कहा कि उनका ईमान उनको नफा नहीं देगा। सूरत अल-अनाम में यह आयत मौजूद है, जाके देख लीजिए कि ऐसे लोगों को उस वक्त निशानियां फायदा नहीं देंगी, अल्लाह के वजूद की बात। या मेरे आपके लिए निशानी क्या है? सूरज कितना बड़ा है, चांद कितना बड़ा है, और अल्लाह के इशारे पे चलता है, उसके मुकाबले में मैं कैसी हूं, कितनी हूं? और आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी अकड़ कितनी है? 5 दफा अगर अल्लाह अपने घर में बुलाता है या अल्लाह 5 नमाजों पे जरा सर को झुकाता है, उस वक्त अकड़ते कितने हैं, कितना करते हैं? और आपको पता है कि किस तरीके से सूरज नहीं सितारे भी चल रहे हैं, कुल्लू फी फलक की जस बहोन, और कहते हैं कि 1 सेकंड में 100 मील की रफ्तार है कुछ सितारों की, और सूरज की तो इससे बहुत बड़ी है। आप अगर देखें कि पूरे निजामे शमसी को लिए हुए 20 किलोमीटर तकरीबन 12 मील फी सेकंड की रफ्तार से यह सूरज घूम रहा है, आपकी गाड़ी 100 मील पे जाए तो आप अंदर कांपने लगते हैं, जरा से इधर से उधर हो तो हम हलने लगते हैं, और आप देखिए कि सूरज किस तरह घूमता है और उसके साथ चांद, हर रोज कभी हिलाल है तो कभी कुछ है, ये क्या सिखा रहा है? आपकी मेरी जिंदगी है, बचपन हिलाल है, जवानी बदर है, कमर बनने वाले हो, और एक वक्त एक आएगा कि फिर तुम दोबारा कुछ न रहोगे। इसी सूरत की एक आयत में आएगा कि जिसको हम जीने का एक मौका देते हैं, यानी वो दोबारा बचपन की तरफ चल पड़ता है, कहते हैं ना बूढ़ा और बच्चा एक बराबर, तो आपकी मेरी ताकतें दिन ब दिन कम हो रही हैं, आपकी मेरी जिंदगी में ये वक्त अगर इस वक्त जवानी का है ना, इसको रब के रास्तों में लगा लें, रब से जुड़े, दूसरों को जोड़े, उसके दीन को फैलाने की कोशिशें कर ले, उसके बंदों की खिदमत करें, सोशल वर्क कर लें, और सबसे बड़ा सोशल वर्क आज के दौर में क्या है, लोगों को अल्लाह से जोड़ दें। भटक रहे हैं, सिसक रहे हैं, परेशान हैं, अल्लाह कहता है इतना कुछ कर रहा हूं, बताओ कोई है इन सारी चीजों को इधर से उधर करे? और सबसे बड़ी बात है लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर, ना तो सूरज के बस में है कि वो चांद को जा पकड़े, यानी रात को चांद निकला हुआ तो सूरज सा फिर उठ के आ जाए कि मैं आ गया हूं तुम्हें मिलने, और ये एक दिन से नहीं हो रहा, सदियों से हो रहा है कि सूरज दिन में और चांद रात में, कभी लड़ाई सुनी? इसको तो आपने बड़ा नुमाया कर दिया, दिन में सारे चमकता हुआ देखते हैं, मुझे अंधेरे में कर दिया, हमें तो अपनी ड्यूटी ही नहीं पसंद आती, हमें तो अपना मुकाम ही नहीं समझ आज तक आया, हमें तो ये पता ही नहीं कि हमारे में खूबी है क्या और हमने क्या नहीं करना और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। देखिए सूरज इंसान के मुकाबले में कितना बड़ा है, सूरज के मुकाबले में ये जमीन कितनी है, और इस जमीन में मैं और आप एक मक्खी की नोक पे लगा हुआ एक नुक्ता भी नहीं है, कहाँ हम और कहाँ हमारी अकड़, और कहाँ हमारे गम और कहाँ हमारी च्वाइस और कहाँ हमारी पसंद और नापसंद। अल्लाह ताला कहता है इतना बड़ा सूरज अगर मेरे आगे झुका है तो तुम भी झुको, और वलल लैलु साबिक़ुन नहार, और न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, सब चल रहे हैं, सूरज में ताकत नहीं कि चांद को पकड़े, खुद उसके मदार में जाए। ये असल में आज के सबक का लेसन है, डिसिप्लिन। कायनात इस डिसिप्लिन पे चल रही, एक लीडर, और वो कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद। सिर्फ अल्लाह की बात समझाने के लिए कह रही हूँ, एक रब चला रहा है तो सब चल रहे हैं। और आप देखिए गर्दिश, हरकत, सुस्ती नहीं, बेकारियत नहीं, दूसरों के काम में जाके अड़िंगा डालना नहीं है, अपना काम छोड़ के दूसरों के काम पे नहीं, और कह के उम्मीद दिला के अपनी जगह से गायब होना भी नहीं है। मैं आज भी जब ये तैयारी कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग कोर्स जो है ना, वो ये कायनात का सबक है, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स मौजूद हैं। किस तरह इस कायनात का निज़ाम आपको मुझे साफ दिख रहा है ना। देखिए दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं लेकिन क्राइसिस में, प्रॉब्लम्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, मिलियन एरियन बिलियन एरियन लोग हैं, लेकिन अंदर खाते उनमें बहुत सारी उलझने हैं। किसी ने 2-3 दिन पहले एक पिक्चर भेजी, हाथ है और इसके अंदर ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, वो ट्रांसपेरेंट करके दिखाई हुई हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि वो ऐसे देखने में लगता है जैसे वो सवैयाँ नहीं होती बारीक सी, लेकिन वो कई मीलों पे मबनी है। उन्होंने कहा ये कौन है कि जो इसको ऐसे स्टेबल कर रहा है, और हमारी 2 मीटर की फ़ोन की वायर या हमारे जो हेडफोन्स है उसको हर वक्त उलझने पड़ी रहती है। अगर हमारी हाथों की ब्लड वेसल्स में उलझने पड़ी होती तो हाथ मुड़े होते, कभी टेढ़े हो जाते, कभी सीधे हो जाते। ये कौन कर रहा है? कायनात का मालिक कर रहा है। उसकी तरफ चलो। वह कुल्लू फी फलक यस बहून, और सब एक ही फलक में तैरे। इसको भी नोट करें, सबका पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही जगह है, एक जगह सब काम कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, और सारे स्टेबल हैं। कायनात का निज़ाम चलाने का तरीका सिखाया गया, एक की सब माने तो कायनात का निज़ाम ठीक है, इस तरह दूसरा भी ठीक होगा। जिस मुल्क में एक हुक्मरान हो और बाकी सारे उसके फॉलोअर्स हों, हुक्मरान अल्लाह से डरने वाला हो और दुनियावी तौर पे मुखलस हो, तो आप देखिए वो मुल्क कैसे तरक्की करता है। कायनात का निज़ाम हमें बताता है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, जो कहते हो वो करो। कॉल फेल में तजाद नहीं, सूरज कभी लेट नहीं हुआ, चांद कभी लेट नहीं हुआ, कभी सूरज ने छुट्टी नहीं की, चांद कभी पीछे नहीं हो गया, कभी बीमार नहीं हुआ, ये सब कुछ। और अगर आप देखें चांद की ये मंजिलें, अगर बीमारी से ही कर लीजिए, कभी कमज़ोर है कभी सेहतमंद है, काम नहीं छोड़ता। हमारा सबसे पहले काम छूटता है, हर रोज़ हमारी एक नई वजह होती है काम से पीछे रहने की, क्या करें आज ये मसला हो गया, आज वो हो गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें कायनात से सबक लेने वाला बना दे। फिर आगे फरमायत 41, वायतुल्लहुमन्ना हमलना जुर्रियतहुम, और इनके लिए एक ये भी निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया। फिल फुलकिल मशहून, जो भरी हुई थी, ये कौन सी कश्ती है? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। फिर क्या हुआ? वल खलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, फिर इनके लिए वैसी ही कश्तियां और भी पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। कौन सी हैं इसमें? कायनात की सारी। आज छोटी कश्तियां, बड़ी कश्तियां, टाइटैनिक भी इसी में आता है, शिप भी इसमें आते हैं। फरमाया वइन नशा नुग़रिक़हुम फला सरीख लहुम वला हुम युनक़ज़ून, हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये ना बचाए जा सके। वला हुम युनक़ज़ून, फिर ये कश्तियाँ क्यों नहीं डूबती, ये बहरी जहाज क्यों नहीं डूबते? फरमाइल्ला रहमतम मिन्ना व मतान इलाहीन, बस ये हमारी ही रहमत है जो इन्हें पार लगाती है और ये एक ख़ास वक्त तक के लिए जिंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका देती है। अब यहाँ आपको एक नई निशानी मिल गई, कश्ती। कभी बहरी सफ़र किया, शिप पे गए, कश्तियों में बैठे हैं, कैसे रुकती हैं? अभी पिछले ही हफ्ते, 2 हफ्ते पहले गालिबन हम कहीं थे और जहाज समंदर के पास थे, यही सोच रहे थे कि इस बहरी जहाज का कितना वजन होगा, टनों में होता है ना, मन तो बहुत छोटी चीज़ है, पानी पैसे खड़ा है जैसे कोई खुशकी पे चीज़ खड़ी होती है, नीचे पानी है, और आप अगर उसी जहाज के अंदर बैठे हुए ऊपर से एक पिन ड्रॉप करें, छोटी सी सुई, तो वो समंदर के अंदर चली जाएगी, आपको दोबारा नहीं दिखेगी। कौन करता? और जितनी बड़ी कश्ती उतनी महफूज, और जितनी छोटी कश्ती उतनी डरोलती है, क्यों? ये अल्लाह ने सिखाया। मैं सोचती हूँ जो समंदर से एक दफा बच के निकल आए, वो फिर अल्लाह को ना माने तो फिर वो उससे बड़ा ना शुक्रा कोई नहीं। अल्लाह कहता बताओ कौन है तुम्हें करे, और आपको बताया कि टाइटैनिक नाम का एक जहाज, आज से कई सौ साल पहले डूबा, उसके जो लफ्ज़ रिकॉर्ड पे है वो कहता है कि इस जहाज को तो गॉड भी नहीं डुबो सकता। अल्लाह ने उसको डुबो के कई सालों बाद निकाल के निशानी बना के रख दिया। और जहाँ कश्ती नूह का जिक्र है तो एक वक्त आएगा कि वो भी निकलेगी, भरी हुई कश्ती। कैसे हजरत नूह के चंद साथी उसमें थे, आज दुनिया उससे बना दी गई अल्लाह ने। क्या पता चला कि हजरत नूह से पहले लोगों को समंदरों में सफर करने का कोई तजुर्बा नहीं था। हजरत नूह की कश्ती के जरिए बता दिया कि देखो ये पानी भी तुम्हारे लिए सड़क बन सकता है अगर अल्लाह का हुक्म है। इसने नस्ल को डूबने से बचा दिया है तो आगे से सफर शुरू हो गया। और आप देखिए हर बड़ी चीज किसी नबी के जरिए से बनी। हजरत नूह कश्ती के मौजूद हैं, कहते हैं हजरत इदरीस ने कपड़ा बुना, अल्लाह ने कहा इससे दीन और दुनिया की बातों का जमा होना पता चलता है। कायनात की सारी चीजों को लेकर देखिए, अल्लाह ताला ये सारा कुछ बता रहा है आपको मुझे। और यकीन करें अगर समंदर में नहीं भी सफर किया, अब और भी डरने की बात है। समंदर में सफर नहीं किया, बहुत सारों को डर लगता है। मेरे अपने बहुत सारे करीबी ऐसे हैं जो बहुत खौफजदा होते हैं, वो कहते हैं हम पानी में नहीं जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ये जमीन क्या है? जरा जाके साइंस को खोलिए और गूगल करके देख ले, ये पूरी जमीन जो है ना ये पानी के ऊपर खड़ी है। एक बड़ा सा शिप है ये जमीन। और जिस वक्त अल्लाह ने हुक्म देना है, वाइजल बिहार उसज्जिरत और वाइजल बिहार उफज्जिरत, जब क्यामत आएगी ना तो वो जमीन के नीचे का पानी ऊपर आएगा, उबलेगा। और हजरत नूह के दौर में जो पानी जमीन से आया था वो कहाँ से आया था? कुआं खोदते हैं तो चंद फुट की गहराई पे पानी आ जाता है। बड़े बड़े पाइप्स लगा के ये दुनिया में पानी है, पानी के ऊपर आप और मैं अभी भी खड़े हैं। और एक वीडियो मैंने देखी और एक जगह से प्रैक्टिकली जाने का इत्तेफाक हुआ, कोई नहीं पता होता समंदर के किनारे वो ज्यादा इलाका मौजूद है। जब हम वहां गए और तभी सुनाया, और यकीन करें 3-4 दिन का ट्रिप था, खौफ था किस दिन जहाज में बैठेंगे, लगा जहाज में बैठ के सिक्योर हो गए। रात को आम लोग सोते हैं, और जैसे किसी का वाक्य उन्होंने सुनाया, वहां से गुजरते हुए वो जगह भी दिखाई कि रात 2 मंजिला घर है। और अमेरिका में बहुत बड़े बड़े घर हैं, ये जो बात मैं बता रही हूँ ये फ्लोरिडा की है, अमेरिका की वो स्टेट जो पूरी पानी पे है। उसका ऐसा लंबा सा बीच है और मीलों दूर पे सारे शहर पानी पे। और अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे पानी को हटा हटा कर लोग शौक में सीवी और इस तरह की चीजें बनाते हैं। अब उधर क्या होता है खुद ब खुद बिल्कुल नहीं पता चलता, जमीन सिंक करती है। और उन्होंने बताया कि नीचे के फ्लोर में एक कमरा है तो उसमें एक भाई सो रहा है, तो ऊपर वाला दूसरा कमरा जरा दूसरी तरफ है तो वहां वो सो रहे जैसे नॉर्मल है। सुबह 9 बजे सब उठते हैं, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, ऊपर वाला उतर के नीचे आया, क्या हुआ, किधर गया, आया नहीं, उठा नहीं, उसका कमरा खोला, जिस जगह उसका बेड था वो पूरे का पूरा बेड समेत जमीन नीचे पानी में जा चुकी थी। अल्लाह कहते कौन है जो फला सरी हलहु, कैसे जमीन में डूबते। और अल्लाह के नबी की हदीसें मिलती हैं कि खसफ और कसफ ये क्यामत से पहले बहुत होगा। खसफ कहते जमीन फटेगी और पूरी पूरी बस्तियां उसमें चली जाएंगी। आप और मैं खतरों में नाफरमानी करते हो कि बंदा सोचे कि ये जमीन मुझे अगर अभी निगल ले तो बनेगा क्या। फरमाया वमा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून, क्या फरमाया? ये सारा कुछ बयान करके, कश्तियों की बातें करके फरमाया आयत 45, व इजा कील लहुम। अब देखिए एंडिंग है, निशानियां दिखाई, कायनात पे अल्लाह की कुदरत दिखाई, और कब? इजा कील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है इत्तकू डरो, मा बैन अयदीकुम जो तुम्हारे आगे आ रहा है, यानी बचो उस इंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है, वमा खल्फकुम और जो तुम्हारे पीछे गुजर चुका, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पे रहम किया जाए। क्या पता चला कि उनको तारीख के इबरतनाक वाकया दिखाए जा रहे हैं, कौमों के हालात देकर बताया जा रहा है कि तुम्हारा भी तो बुरा अंजाम हो सकता है। बड़ी बड़ी कौमें डूबी, हजरत नूह की कौम डूब गई, हजरत लूत की कौम पे पत्थर बरस चुके, तो तुम पे नहीं हो सकता, तो लिहाजा आज फिक्र करो। लेकिन लोगों का हाल, वमा ताती मिना यति मिना याति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मोरिदीन, इस आयत पे तो रोना आता है सच बताऊं। अल्लाह ताला इंसानों की आदत बयान करते हैं कि इन लोगों को जब ये बात कही जाती है ना तो ये सुनी अनसुनी कर देते हैं। इनके सामने इनके रब की आयात में से जो आयत भी आती है तो ये इसकी तरफ मुंह ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं करते। आज हैं लोग अल्लाह की बातों पे गौर करते हैं। आप दावत दीजिए शादी की तो कैसा रिस्पॉन्स है, और आप दावत दीजिए दर्स की तो मजबूरियां और बहाने और उजर, और ऐसे लगते हैं दुनिया के सबसे मजबूर इंसान ही है। मजबूरी बस एक ही है कि शौक नहीं है और तौफीक नहीं है। फरमाया वमा ताती हिमिन आयत मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मोरिदीन, या मुहासबा भी करें। जब मुझे किसी रब की आयत की दावत दी जाती है तो मेरा रवैया क्या होता है? और दूसरी दावत वाइज़ाकी ललहुमन फिकु मिम्मा रज़ाकुमुल्लाह, और जब उनसे कहा जाता है कि खर्च करो उसमें से जो तुमको अल्लाह ने रिस्क दिया, नोट कीजिए, तुमसे तुम्हारा नहीं मांगा जा रहा, अल्लाह के दिए में से तुमसे मांगा जाता है। क़ालल्लज़ीना कफरू, कहा उन लोगों ने जो कुफर करते हैं, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को, अनुतिमु मन लौ यशाउल्लाहु अतम, क्या हम खिलाएं उन लोगों को जिनको अल्लाह चाहता तो खुद खिला लेता। इन अंतुम इल्ला फी दलाल मुबीन, तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो, ये है गांठ के पक्के, जहां माल की बात आ जाए तो इस तरह के उजर पेश करते हैं, भाई अल्लाह ने उनको खुद देना होता देता, हम क्यों दे, हम किसको खिला सकते हैं, हमारे पास तो कुछ बात ही नहीं है। यानी इसमें इंसानों के दो रवैये बयान किए गए, एक क्या कि अल्लाह ताला की इस कायनात पे गौर व फिक्र के दौरान जब उनको ये बताया जाता है कि तुम डरो बुरे अंजाम से, तो डरते नहीं है, आयतें पेश की जाए तो उसके ऊपर गौर नहीं करते, और जब खर्च करने की दावत दी जाती है तो उस पर बातें बनाते हैं। ऐसे बातें बनाने वालों को आखरत का मंजर दिखाया जा रहा है, व यकूलू न मता हाजल वादु इन कुंतुम सादिकीन, ये लोग कहते हैं ये कयामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी, मजाक करते थे, कहते थे अभी तक तो आई नहीं, इतने साल से तुम कह रहे हो कयामत कयामत कब आएगी, का अच्छा, मा यंजुरून इल्ला सैहतन वाहिदा, दरअसल ये जिस चीज की राह देख रहे हैं वो बस एक धमाका होगा, ताखुज़ुहुम, जो यकायक इनको पकड़ लेगा, वहुम यखिस्सिमून, जबकि वो अपने दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे, फिर होगा क्या, फला यस्ततियो न तौसिया, फिर वो तो वसीयत भी नहीं कर सकेंगे, वला इलाहलिहिम यरजियून, और ना वो अपने घर वालों की तरफ पलट भी जाएंगे। यहां से अगले रुकू में क्यामत के मंजर है, यहां बस क्यामत की बात की कि ये जो मजाक उड़ाते हैं और जिनको यकीन नहीं है क्यामत आनी है, हालांकि कायनात की हर चीज बता रही है कि क्यामत आएगी, और लिख लें कि तौहीद के मसले के बाद दूसरा बड़ा जो झगड़ा था ना अल्लाह के नबी और मक्का वालों के बीच में, वो आखरत थी। अभी तक जितनी आयतें हमने पढ़ी है ना सूरत यासीन की, ये तौहीद तौहीद तौहीद, अल्लाह एक, आयत आयत, अब आगे अगला रुकू चलेगा तो उसमें देखेंगे आखरत, कल का अगला लेसन पूरा आखरत पे है, जन्नतियों का बयान जहन्नमियों का बयान, तो अल्लाह ताला अकली दलाइल दे रहे हैं कि देखो मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, कब्रों से भी इसी तरह निकल आओगे, क्यामत आएगी, तुम्हें सिर्फ उसका अभी यकीन नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं मान रहे कोई क्यामत नहीं, ये नहीं जब आएगी इतनी अचानक आएगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये आ गई है, और हदीस में आता है कि क्यामत का धमाका इतना अचानक होगा, इतना अचानक होगा कि कोई दूसरे की खबर नहीं रखेगा। एक हदीस सुन लीजिए, अब्दुल्ला बिन अमर से और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, लोग रास्तों पर चल रहे होंगे, बाजारों में खरीदो फरोख कर रहे होंगे, अपनी मजलिसों में बैठे गुफ्तगू कर रहे होंगे, जैसे आम दुनिया का काम है, कोई बाजार में गया है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतने में होगा क्या, ऐसे में यकायक सूर फूंका जाएगा, कोई कपड़ा खरीद रहा था तो हाथ से कपड़ा रखने की नौबत ना आएगी कि खत्म हो जाएगा, कोई अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए हौज भरेगा और अभी पिला ना पाएगा कि क्यामत बर्पा हो जाएगी, कोई खाना खाने बैठेगा लुकमा उठा ना पाएगा कि क्यामत आ जाएगी, पहले से बता के नहीं आएगी कि आप और मैं तैयारी कर लें कि 2010 में क्यामत आ रही है, एक आया था शोशा 2010 में, अल्लाह ताला ने लोगों को बताया होता तो सबसे पहले नबी को बताता। तो आप देखिए कि यहाँ पे आयतें पूरी हुई, खुलासा क्या है सारी बात का कि क्यामत के वजूद की निशानी इस कायनात में, जो चीज़ आती है वो जाती है, जो बनती है वो बिगड़ती है, रात दिन में दिन रात में ढलती है, और हर चीज़ इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए कायनात में ये सब कुछ रखा है। अब करना क्या है, इस सबको पढ़ के अगर आप पेज 38 खोल लीजिए, मैं क्या करूँ इस लेसन को पढ़ने के बाद, तो रोशन निशानियों पे गौर व फिक्र करके अल्लाह को पाना है इंशाल्लाह। आज के सबक के बाद आपके दिल में ये रग़बत आ रही है कि अब इंशाल्लाह जब बाहर भी होंगे तो गौर व फिक्र करेंगे, और मैंने बहुत कम लोगों को इसका शौकीन देखा, हालांकि यकीन करें वो बंदा ना कभी बोर हो सकता है, ना उसको तन्हाई का एहसास होता है, ना अकेले का, कौन जिसको कायनात पे गौर व फिक्र का मौका मिल गया। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आज की चेकलिस्ट के 12 पॉइंट्स हैं, मैं बोलती हूँ आपने घर जाके इसको देखना है। पहला क्या है? क्या मेरे दिल को यकीन है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को ज़िंदगी बख्शी, गल्ले फल और पानी निकाला, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए, अल्लाह ताला रात के ऊपर से दिन को हटा देता है, सूरज और चांद का चलना ज़बरदस्त और अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है, अल्लाह ताला सूरज को ठिकाना बताने वाला है, यानी अल्लाह बताता है सूरज को किधर जाओ, अल्लाह ताला ही चांद की मंजिलें मुकर्रर करने वाला है, अल्लाह ताला ही ने नस्ल इंसानी को भरी हुई कश्ती में सवार किया, अल्लाह ताला ही ने कश्तियाँ पैदा की, अल्लाह ताला ही ने रिस्क अता किया, अल्लाह ताला चाहे तो गर्क कर दे और कोई फरियाद सुनने वाला ना हो, अल्लाह ताला की रहमत पार लगाती है और अल्लाह ताला की रहमत की वजह से ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है। आप देखिए, जब कायनात के इतने बड़े बड़े काम अल्लाह ताला कर रहा है, तो फिर मेरी आपकी ज़रूरियात क्या है उसके आगे? तो इस सारे सबक को पढ़ने के बाद अपने लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, आप तो इतने बड़े बड़े काम करते हैं, तो मेरे तो काम ही बड़े छोटे हैं, मैं अपने सारे काम आपको देती हूँ, आप मेरे मामलात की इसलाह फरमाएं, उफव्विज़ अम्री इलल्लाह, आप मेरे साथ बेहतरियों के मामले करें, मैं इसके बाद आपके आगे झुकने को तैयार हूँ। और दूसरी चीज़ जो आज के सबक से मिली, लोगों को रब से जोड़ने की कोशिश करनी है। यकीन करें, ये सबसे बड़ा तोहफा है जो आप अपने नेबर्स को, अपने कुलीग्स को और अपने साथ रहने वालों को दे सकते हैं। सिर्फ रब की बातें करें, सिर्फ रब की बातें करें, कोई फिकी इशू नहीं, कोई इस्लाम का कॉन्ट्राडिक्टरी इशू नहीं, सिर्फ गॉड गॉड और गॉड, और अक्ल को झंझोड़ने वाले दलाइल दें। आप देखिए कि अक्ल अल्लाह ने दी है, लोग समझते हैं, और अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आपने बाद में वाकई सोच के शऊर के साथ इस चेकलिस्ट को फिल करना है, ठीक है? अभी इतना काफ़ी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون